Он чем?
Он чем?
Если нас тут порает, а ну-ка.
Там мы посылаем, что мы не посылаем, давай.
Дивимся, как будем. Куда порай сам карна? Сто упакар. Карна. И есть пароупакар. Вастов мен пароупакар и
сто
упакар.
Апне СМС кеда на? То. Мне фон никала. То мне ясе клик ho gaye. Абхи ясе сачин ho gaye СМС ая. Ор мега дранда ая. Сингл аттак кар гая.
То. Вастов мен пароупакар и сто упакар. वास्तव में विश्व कल्याण ही स्व कल्याण है, वास्तव में विश्व सेवा ही स्व सेवा है। क्यों
क्यों विश्व में हम भी हैं, इसलिए।
अच्छा, विश्व में हम भी हैं,
और
विश्व की सेवा करे तो हमारी सेवा कैसे हो रही है? विश्व का कल्याण करे तो हमारा कल्याण कैसे हो रहा है? विश्व पर उपकार कर रहे हैं तो हमारा उपकार कैसे हो रहा है?
उल्टा
वो कैसे?
क्योंकि अनेक आत्माओं की दुआएं मिलती हैं,
दुआएं
मिलती हैं।
जब हम विश्व कल्याण करेंगे, विश्व सेवा करेंगे, परो उपकार करेंगे, तो जिसका उपकार करेंगे उसकी दुआएं मिलेगी। तो फायदा किसको हो रहा है? हमको फायदा हो रहा है। तो वास्तव में परोपकार ही स्वोपकार है। एक दूसरा
नेगेटिव
कर, ये पुण्य का काम है।
उपकार पुण्य का कार्य है। अगर किसी पर उपकार किया जाता है तो पुण्य किसको मिलेगा? जिसके ऊपर उपकार कर रहे हैं उनको पुण्य थोड़ी मिल रहा है। पुण्य किसको मिल रहा है? स्व को मिल रहा है ना। तो परोपकार ही स्वोपकार है, क्योंकि जिसके ऊपर उपकार किया जा रहा है वो उसका पुण्य बन रहा है, और वो पुण्य हमको ही मिल रहा है। दो दुआएं। तीसरा,
उसमें हमारी भावनाएं भी शुद्ध होती हैं, जैसे लोगों की नजर में भी हम ऐसे होते हैं कि परोपकार के कार्य में लगे हुए हैं।
नजर सुधर
जाए, संसार की दृष्टि भी परिवर्तन होती है जब हम इस तरह के कार्य में लगे रहते हैं, और जो भी हम दे रहे हैं वो सारा वापस आ
रहा है।
कायनात में जो संकल्प जा रहे हैं वो सब कुछ वापस हमारे पास आ रहा है।
और जो एनर्जी हम दे रहे हैं पहले तो हमें खुद क्रिएट हो रही है,
वो देने के लिए हम अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं,
तो वो भी फायदा हमारा।
और वो भी छोटी मोटी एनर्जी में, क्योंकि देना है तो वो प्रचंड एनर्जी चाहिए। वो अध्यात्म का बल हमारे अंदर तैयार हो रहा है, उसके बाद हम दे रहे हैं। तो इस क्रिया में हम शक्तिशाली बन रहे हैं, देने की क्रिया में ही हम ले रहे हैं। ऋषि मुनि भी देते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो भी करते थे ना यही कार्य। दूसरों को देने का कार्य नहीं, लेने का कार्य। सन्नाटा, नीरवता, निस्तब्धता छा जाती थी आश्रम के पास। बाबा ने सन्यासियों के लिए भी कहा ना, सन्यासी अपने आश्रम दूर दूर तक बनाते हैं। सन्यासियों ने भी क्या किया? पोची
पोची
बोला ना,
संसार को पोची,
संसार को थमा के किसने रखा? सन्यासियों ने थमाया। एक मूल्य में बाबा ने खास शंकराचार्य की आत्मा को याद किया साकार में। अगर शंकराचार्य की आत्मा न होती तो पता नहीं भारत कहाँ चला गया, भारत जल मर, भारत का न जाने क्या हाल हो गया था। सन्यासियों की पवित्रता ने ही भारत को थमा के रखा है। इसके लिए बाबा बाल ब्रह्मचारियों की भी महिमा गाते हैं। जो बाल ब्रह्मचारी है, जो शंकराचार्य होते हैं, वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं। वो टाइप के सन्यासी नहीं होते कि जिन्होंने शादी की और बाद में सन्यास किया। जो बाल ब्रह्मचारी है, विवेकानंद स्वामी, दयानंद सरस्वती, ये बाल ब्रह्मचारी है। जो बचपन से ब्रह्मचारी है, शिवानंद स्वामी, शिवानंद डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले, ये सारे बाल ब्रह्मचारी है। तो बाबा ने तो आज उनकी भी महिमा की ना, कि विश्व के आगे वो श्रेष्ठ है, प्रसिद्ध है। अभी भी उनका नाम बाला है। तो जो कुछ हम भेज रहे हैं वो वापस आ रहा है। तो परोपकार करने में ही स्वोपकार है, और क्या है कारण? खुशी
मिलती है, समर्थ
भी
बन जाते हैं, व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं,
व्यर्थ से मुक्त खुशी।
पकड़ रहा
आवाज आएगा बहुत?
नहीं नहीं इसमें आवाज नहीं।
अच्छा
बंद कर
ज्ञान का खजाना भी बहुत बढ़ता है, स्थिति भी बहुत शक्तिशाली बन जाती है।
स्थिति शक्तिशाली परोपकार एक बहुत बड़ा कार्य, साधारण आत्माएं परोपकार नहीं कर सकती, शक्तिशाली आत्माएं परोपकार कर सकती है। सारे दिव्य गुण आ जाएंगे परोपकार करते करते ही।
वाटलाइट होता है
जन्म सिद्ध अधिकार,
ऐसा हाँ। नहीं होता है कि हम जाके भी करें वो कर रहे थे,
संस्कार के अंदर चाहिए ना। दान दानी दान करना एक महान कार्य है, सब कोई दान नहीं कर सकता, धन होते हुए भी इच्छा होते हुए भी नहीं कर सकता,
नहीं कर सकता।
संस्कार ही वैसा चाहिए दान करने का, दानी आत्माएं संसार में गिनी चुनी है।
जिसका ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव है वो दानी बोलते
हैं। ब्लड ग्रुप तो अभी पता चले, उसके पहले क्या था?
यही वो बोलते हैं साइंस में।
उसके पहले क्या था? वो तो अभी 200 साल में पता चले, 150 साल में।
इससे पहले नहीं था
बस,
तो पहले आईडिया से कुछ करते थे,
कुछ कंफ्यूजन का कोई सिस्टम ऐसा कुछ था नहीं। तो परोपकार पर सेवा पर हित जन कल्याण से ही स्व कल्याण, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अनेकों के कल्याण के लिए अनेकों के सुख के लिए सुख मिलता है, खुशी मिलती है, दुआएं मिलती
है, ज्ञान गुण शक्तियां सब बढ़ जाती
है, शक्तियां प्राप्त होती है परोपकार करने। इसके लिए बाबा ने आज की मुरली में कहा कि ये सब तुम चिंतन करो, बाप नहीं सुनाएंगे।
और उसको समाज भी मना,
बाबा ने सुनाया बाल ब्रह्मचारी के बारे में, और ये काम तुम करो, कभी और सुनाएंगे बाप दादा।
आगे मुरली होगी
और क्या होता है परोपकार से? ये तो बातें हो गई, और भी कुछ होता है परोपकार से? निर्माणता, निरंकारिता, निमित्त भाव, केवल कहने मात्र निमित्त भाव नहीं, ब्राह्मणों के तो वाणी में ही है, मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, बाबा करा रहा है, और साथ साथ अहंकार और अपमान भी चलता है, बोल रहे मैं निमित्त हूँ, पर मेरा भी मुझे भी पद मिले, मुझे भी आगे रखा जाए, अपमान और अभिमान से व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं। तो वो जो निमित्त भाव की भावना है वो गहराई में बैठती है। और भी कुछ होता है?
और संतुष्टता,
संतुष्टता दूसरों का कल्याण करने से सच्ची संतुष्टता प्राप्त होती है, आत्मा को सच्चा सुख प्राप्त होता है। और क्या होता है परोपकार से? आत्माओं की दुआएं तो मिल रही है, आत्माओं के बारे में बता रहे हैं, और भी कुछ होता है किसी और के बारे में?
परोपकार करने से दूसरे भी प्रेरित होते हैं चीज के लिए,
उसी तरह करने के लिए। हमको हम एक सैंपल बनेंगे,
सैंपल बनेंगे
तो जैसे सैंपल होंगे तो वैसे सब करेंगे। सैंपल अगर रो रहा होगा तो सौदा कैसे होगा? हम सैंपल बनेंगे विश्व के आगे। और भी कुछ होता है? अभी भी हम आत्माओं तक ही तुम आप सीमित हो, और भी इसके बाहर जाओ थोड़ा।
प्रकृति,
प्रकृति के रूपता, प्रकृति पर भी हमें तत्व को पावन करना है। कल की मुरली ये देवता इस धरा पर पैर नहीं धरेंगे, नहीं तो देवता पैर कब धरेंगे? जब तत्व पावन हो जाए। तो तत्व को भी पावन करना है, तत्व को भी प्रकाश देनी है, क्योंकि तत्व तो बिगड़ने वाले हैं, तत्व भी बिगड़ने वाले हैं। एक समय आएगा एक दाना भी नहीं मिलेगा, तत्व बिगड़ने वाले हैं, भगवान उवाच। इसके लिए तत्वों की भी सेवा करनी है, सुबह एक बार और शाम को एक बार, दो बार सकाय देनी है तत्वों को।
उस दिन जो मुरली दिन तत्व वाली सूर्य अमृत वेले मुझे बैठे वेले संकल्प करके आज सारे दिन में तत्वों को सकाय देंगे, और वो मीटिंग में चेहरा मिले।
कल की थी?
कल की हुई, कल सूर्य।
तुम्हें पांचों तत्वों को दो बार सकाश देनी, सोचो मैं फरिश्ता सूक्ष्म वजन में, पवित्रता का फरिश्ता हूँ और पांचों तत्व हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े। एक इमेजिनेशन, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। दो अभ्यास है, एक सूर्य का एक फरिश्ता का। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, आकाश में स्थित संपूर्ण विश्व से, विश्व में मुझसे पवित्रता की सफेद रश्मियां किरणें फैल रही है, सारा विश्व पावन हो रहा है। आकाश में मैं फरिश्ता हूँ, मुझसे पवित्रता की किरणें निकल संपूर्ण आकाश में जा रही है, संपूर्ण बादलों में जा रही है। अब बादलों में पवित्रता चली गई तो अभी क्या होगा? तो वही पवित्रता अभी बरसात के साथ में धरती पर गिर रही है, हवा में अभी आएंगे हम। सबसे पहले हवा में भी नीचे, सबसे पहले मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, मुझसे पवित्रता की किरणें निकलकर संपूर्ण आकाश में गई, बादलों में गई। फिर उसके बाद मैं सूर्य को प्रकाशित कर रहा हूँ, सूर्य को पवित्रता की किरणें दो। हमने सूर्य को पवित्रता की किरणें दे दी, अभी सूर्य से अपनी किरणों के साथ पवित्रता की किरणें वो विश्व में फैलाएगा। चंद्रमा को पवित्रता की किरणें दो, सितारों को, नक्षत्रों को, ग्रहों को पवित्रता की किरणें दो, सारे ग्रहों को पवित्रता की किरणें दो। ये ऊपर का काम हुआ, अभी थोड़ा नीचे, नीचे आने के बाद में वायुमंडल को पवित्रता की किरणें दो। पहला तत्व होगा आकाश, दूसरा वायु, वायुमंडल को पवित्रता की किरणें चाहिए। फिर ऊपर आया धरती, धरती के ऊपर मैं फरिश्ता खड़ा हूँ, अभी मेरे पैरों से संपूर्ण धरती में पवित्रता की किरणें जा रही है। फिर एक एक खंड में अगर जाना है तो जा सकते हैं, पांच महासागर और सात महाद्वीप, एक एक करके जहाँ जाना है वहां पर धरती को और जल को और अंत में अग्नि को भी पवित्रता की किरणें देंगे। अग्नि सारे विश्व को, अग्नि पावन करने वाली है, उसको भी पवित्र करने वाले हम हैं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम्। गीता का सातवां अध्याय में लिखा है कि ये ज्ञान इतना पवित्र है कि पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। राज विद्या राजगुहम पवित्रमिदम उत्तम। जो पवित्र है, हे अर्जुन मैं तुमको वो ज्ञान सुना रहा हूँ, राज विद्या है वो। शुरुआत ही गीता की श्लोक की है, राज विद्या राजगुहम अति गुह्यतम ज्ञान है ये, पवित्रमिदम उत्तम। जो पवित्र को भी पवित्र करे, ऐसा ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूँ। तो अग्नि तो सबको पवित्र पावन करती है, हम अग्नि को पावन करेंगे। अग्नि सबको जलाकर पवित्र करती है, हम अग्नि को पावन करेंगे। तो पांचों तत्वों को सकाश, चारों ओर सकाश, दसों दिशाओं को सकाश, तीनों लोकों को सकाश, चौदह भुवन गायन है शास्त्रों में, चौदह भुवन है, अभी कुछ त्रिभुवन भी है, चौदह भुवन है, सबको सकाश, वनस्पतियों को सकाश, पशु पक्षियों को सकाश, ये सब अचेत, सबको सकाश देनी है, सबको सकाश देनी है। हमारी सकाश इतनी शक्तिशाली है, विवेकानंद का एक वाक्य है, अगर कोई एक ऋषि एक गुफा में बैठकर अपने मन को एकाग्र कर ले, ऋषि अपने मन को एकाग्र कर ले, तो उससे अगर वो केवल पांच संकल्प करे, उसके वाक्य है, केवल एक ऋषि एक गुफा में बैठकर अपनी संपूर्ण ब्रह्मचर्य की शक्ति के साथ पांच संकल्प करे, तो वो पांच संकल्प वहां से निकलकर पहाड़ों को चीर कर, समुद्र को लांग कर सारे विश्व में फैल सकते हैं। एक एक संकल्प में इतनी शक्ति है, इसके लिए तुम्हारा एक एक संकल्प शुद्ध शक्तिशाली ज्ञान स्वरूप होने चाहिए। शुद्ध संकल्प में इतनी शक्ति है, तो हमारा एक एक संकल्प प्रकृति को पावन करने वाला है, प्रकृति को भी सकाश देने वाला है, तो प्रकृति भर भी उपकार। एक मनुष्य आत्मा है, एक प्रकृति, सब आगे सब जीव जंतु जितने हैं, और भी एक काम होगा स्वोपकार परोपकार करने से, ये तो सब परमात्मा दुआ है,
परमात्मा दुआ
मिलेगी कि नहीं? उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सहन करने से क्या फायदा है? क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है, सहनशील बनो, तो इसके लिए मार्क्स तो मिलेंगे। आज्ञाकारी बनने के तो मार्क्स है, हाथ उठाने के अगर मार्क्स है, चार्ट लिखने के अगर मार्क्स है, मुरली में आने के अगर मार्क्स है, अमृत वेला उठने के मार्क्स है, करो या ना करो मार्क्स तो है, उठने के मार्क्स तो है। तो भगवान की आज्ञा के हर आज्ञा का पालन करने के मार्क्स है, तो परमात्मा दुआएं तो मिलेगी। तो वास्तव में परोपकार ही स्व उपकार है, वास्तव में विश्व कल्याण ही स्व कल्याण है, वास्तव में विश्व सेवा ही स्व सेवा है। क्योंकि खुशी मिलेगी, दुआएं मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगी, शक्तियां मिलेगी, ये सारे कारण। जो जाएगा वो आएगा, प्रकृति की दुआएं, परमात्मा की दुआएं, सब कुछ मिलेगा।
परिवार,
तो आज तो बाबा ने ब्राह्मण परिवार के प्रति और विश्व के प्रति परोपकार, और जो उपकार उसने किए है उसका भी उसको धन्यवाद देना है। उपकार तुम्हारा हो बाबा, उपकार तुम्हारा है बाबा। यज्ञ को भी सकाल सुना, सबको सकाल। ब्राह्मण परिवार में यज्ञ है, ब्राह्मण परिवार अर्थात यज्ञ आई है, ब्राह्मण परिवार और विश्व कुछ ना छूटे, जो कुछ दिखता है सबको सकाश, अपने ही शरीर को सकाश, ताकि इंद्रियां ठंडी हो जाए, दवाई लेने की जरूरत ना पड़े, सन्यासियों की तरह अपनी सकाश से शरीर को चलाना है। बाबा ने कहा है ना, शरीर से, योग से शरीर को थमाना है तुमको। चलो ये तो हम यहाँ से वो गीत से इधर आ गए अभी मुरली पर। तो रोने के लिए क्या कहते हैं बाबा, रोना चाहिए या नहीं चाहिए? कोई विशेष विशिष्ट परिस्थिति में रोने की श्रीमत है कि है ही नहीं? बिल्कुल कोई बहन नहीं है इधर, बहनों को ज्यादा रहता है रोने का। भाई मन से रोते हैं, वैसे भी रोते हैं,
प्यार से रो लेते हैं।
वो तो बाबा ने कहा है, बाप की याद में तुम्हारे आंखों से आंसू आ जाए। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, कोई विशिष्ट परिस्थिति में रोने की श्रीमत है क्या? क्या कहेंगे, रोना अर्थात आंसू, रोने की तो थेरेपी है, साइंस कहता है रोना चाहिए, स्क्रीन थेरेपी कहते हैं, अंदर से स्क्रीन थेरेपी है। जो बहुत डिप्रेशन के पेशेंट रहते हैं उनको कई समय तक साथ में बिठाया जाता है, कुछ अलग प्रकार की थेरेपी है कि जिनको रोज आधा घंटा ऐसे पेट के बल लेटना है और रोने की कोशिश करना है, अपना सारा निकालना है बाहर। हाँ, ये थेरेपी है अलग अलग, जिसमें मतलब सुनाओ सब कुछ, ऐसे भगवान को सुना रहे या किसी को सुना रहे और अपना सब बाहर निकालो, ताकि वो निकले तो हल्का हो जाए उसके बाद। ये थ्योरी है संसार की। बाबा ने इसको कुछ बोला नहीं इसके बारे में कि रोना है करके, बाबा ने कहीं श्रीमद नहीं दिए।
जन्म होने के बाद भी बच्चों को रुलाया जाता है, नहीं भी रोते हैं।
वो इसके लिए सतयुग में ऐसा नहीं होगा, पर उल्टा करके
नहीं, यहाँ रुलाया जाता है।
वही मैं कह रहा हूँ, किसी विशिष्ट परिस्थिति में रोने की श्रीमत है या नहीं है? रोने वाले को बाबा क्या कहते हैं?
विधवा।
विधवा जो रोते हैं बाबा उन्हें विधवा टाइटल देते हैं,
जो रोते हैं वो
खोते हैं। पतियों का पति मिल गया फिर भी रोते, विधवा हो क्या?
सुख का सागर मिल गया फिर भी दुखी
है। तो बोलो, आज बाबा ने पांच बातें बताई रोने के लिए, कौन कौन सी? सबसे पहली
ये सुख के सागर की बात,
ये वाली
सुख का सागर मिल गया तो।
पांडवों से मुलाकात में बाबा क्या कह रहे हैं कि सुख का सागर नयनों में समाया है, तो रोना कैसा? एक माताओं को क्या बोला, रूहानियत अगर नैनों में है, जिन नैनों में रूहानियत, वहाँ रोने का क्या काम? जहाँ रूहानियत है वहाँ आंसू कैसे? दूसरा, तीसरा नहीं, हाँ सैंपल, क्योंकि तुम विश्व के आगे सैंपल बनने वाले हो, अगर सैंपल अगर रोया तो सौदा कैसे होगा? उसका नुकसान हो जाएगा ना, सौदागर तो वो है, सौदागर तो वो बिजनेसमैन वो है, उसके सेल्समैन रो रहे तो कौन आएगा प्रोडक्ट लेने अंदर दुकान में, कोई आएगा सर?
माया आ
जाएगी। चौथा तीसरा पॉइंट कि बाबा पूछ रहे कि तुम्हारी प्रजा नहीं रोती तो होनहार राजा रोते। और एक पॉइंट है, सर्व संबंधो सैंपल हो गया, सर्व संबंध साथ बाबा के साथ है तो रोना कैसे? तो सबसे पहली पॉइंट है रोने के लिए,
सुख
का सागर नैनों में समाया है तो रोना कैसा? रूहानियत अगर आंखों में समाई है तो रोना कैसा?
सैंपल रोने वाले हमने तो आगे,
सैंपल अगर रोने वाले है तो सौदा कैसे होगा? अगर प्रजा रोने वाली है क्या मतलब होवनहार राजा कभी रोता है? और सर्व संबंध एक के साथ है, सर्व संबंध के सागर में समाये हुए है तो रोना कैसे? स्वप्न में भी दुख की लहर ना आए। स्वप्न अर्थात यहाँ पर केवल फूल नहीं है मेरे ख्याल से, स्वप्न अर्थात सूक्ष्मता, बाबा मन के लिए, मन के रोने के लिए कह रहे हैं ना, मन का रोना भी नहीं तो आंखों का रोना भी नहीं, रोना बंद, रोना प्रूफ। अध्यात्म की परिभाषा ये है कि अध्यात्म में जैसे जैसे उन्नति होती है ये जो बहुत सारे इमोशंस हैं, भावना है, ये धीरे धीरे इसको नष्ट करना होता है, मनोनाश कहते हैं इसे शास्त्र, मन का नाश कर देना, मन को, मन की मृत्यु, ये योगी की परिभाषा है, मनोनाश, छोटे छोटे भावनाओं से हिल जाना। पर एक उसमें भी एक दूसरी स्टेज है कि जो बहुत आगे चले जाते हैं इस तरह कर करके, फिर उसमें एक विश्व, पहले तो विश्व के प्रति घृणा क्योंकि संसार से बाहर निकलना है, पर यही जब स्टेज आगे बढ़ जाती है तो विश्व कल्याण की भावना जागृत हो जाती है। पर वो जो विश्व कल्याण की भावना वाला है वो इतना शक्तिशाली रहता है कि वो उससे प्रभावित नहीं होता है, पर वो अगर पहले ही वो भावना रखे तो उसमें फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि छोटा अगर झाड़ है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, नहीं तो कोई भी खा लेगा उसको, उसको अलाउड नहीं है ये यहाँ जाओ वहां जाओ ये करो वो करो। पर वो जब बड़ा वृक्ष बन जाता है तो हाथी भी बांधो तो टूटेगा नहीं, वो हाथी का भी कल्याण कर सकता है, पर पहले ही सोचे मैं हाथी का कल्याण करूं तब नहीं होगा। तो शास्त्रों ने इसे मनोनाश कहा है कि ये जो फीलिंग्स है बहुत सारे इमोशंस है, ऐसा आदमी योगी नहीं बन सकता, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेचर है, योगी नहीं बना जा सकता, क्योंकि बार बार आंसू, कोई रोज एक बार रोते हैं, कोई हफ्ते में एक बार, कोई महीने में एक बार, सबकी अपनी अपनी, बहने ज्यादा रोती है, इधर बहने नहीं है, किसी को रोना ही नहीं आता, आंसू ही सूख जाएगी, कोई कोई अंदर ही अंदर रोते तो नहीं पर दुखी रहते, उदास रहते, विषाद में रहते, वो ज्यादा खतरनाक है एक्चुअली। इसके लिए तो ये क्राइंग थेरेपी निकली है कि अंदर ही अंदर दबाव नहीं, दबा के रखा जैसे वो ये है नीचे आग, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है केटली और पूरा बंद करके रखा है प्रेशर कुकर, अगर उसको उसका विस्फोट हो जाएगा नहीं तो, अगर उसको निकाला नहीं भावना, बहुत ज्यादा कोई 10 साल से दबा रहा है तो विस्फोट हो जाएगा। इसके लिए कहते हैं रोना से टेंशन कम होता है, संसार की थ्योरी, स्ट्रेस कम होता है, खुशी आती है, आंखें थोड़ी आंसू आते तो आंखें में वो एंटीवायरल का काम करते हैं, एंटी बैक्टीरियल का काम करते हैं आंसू, आंखें स्वच्छ होती है, ये सब साइंस कहता है। इसके लिए रोने दो, रोने की थेरेपी है, चित्कार निकलनी चाहिए कहते हैं, चित्कार है, चित्कार आउटबर्स्ट, एक आवाज, जोर की जो आवाज होती है वो चित्कार उसको कहते हैं, तो उस तरह उसको स्क्रीम थेरेपी कहा जाता है, स्क्रीम मतलब चिल्लाना जोर जोर से, जैसे लाफिंग थेरेपी है वैसे स्क्रीम थेरेपी भी है, जो जिसमें लिटाते हैं ऐसे पेट के बल और उसको सुलाने की कोशिश करते, एक दो महीने लगते हैं किसी किसी को रोने में, इतना जल्दी रोना आता नहीं, तो एक बार पूरा निकालना है उसका, कैथारसिस कहते हैं जिसमें पूरा अंदर जो कुछ भरा है सब बाहर निकालो ताकि उसकी बीमारी का पता चले क्या है, वैसे सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी कुछ ना कुछ होते रहते हैं, तो अंदर कुछ डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस सारा बाहर निकाल।
इनका पैरामीटर नहीं है जो डिप्रेशन टेंशन क्या सोच रहा है
या वही तो बात करने से ही। तो बाबा ने रोने के लिए तो मना किया
है ना,
दुख की लहर ही नहीं आनी चाहिए, स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए तुमको दुख की लहर। सुख का सागर तुमको मिल गया तो दुखी कैसे हो सकते। तो ये बात कही बाबा ने किससे, शक्तियों से। और क्या बोला शक्तियों को, बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने आगे उनको उठाया है, बाबा ने आगे उनको चढ़ती कला का सहयोग दिया है। संसार ने तो उनको गिराया था, बाबा ने उनके सर पर ज्ञान का कलश रख दिया। बाबा ने आकर उनको वंदे मातरम कहा, बाबा ने आकर उनको क्या क्या कर दिया, और जगत माता कह दिया। बाबा ने आकर गुरु भाई बना दिया। बाबा ने आकर उनको
अपना सब कुछ सौंप दिया,
अब ट्रस्ट उनको अपना सब कुछ ट्रस्ट उनके नाम से बना दिया,
नाम से कर दिया
सारा कुछ सौंप दिया ना उसको।
ब्रह्मा की पहली विशेषता,
और अपने यज्ञ का नाम भी किसके नाम से रख दिया, ब्रह्मा कुमार के नाम से नहीं रखा, ब्रह्मा कुमारी के नाम से रख दिया। सबसे बड़ा काम तो ये कर दिया उसने।
इसमें भाई फिर भी पूछ रहते हैं, बहनों में फिर थोड़ा सा होता है
क्या गया ये भी। तो बाबा कह रहे शिव शक्तियों की महिमा। बाबा कह, बाबा ने केवल उनको अपने से भी आगे रखा है, इसके लिए उनको क्या करना है, सदा खुश रहना है। जब कोई खुश रहता है तो चेहरा चमकता है, अगर किसी को कुछ प्राप्ति हो जाती है तो चेहरा चमकता है। तो तुमको भी तुम्हारा भी चेहरा चमकना चाहिए। फिर बाबा ने आगे पूछा, कोई रोता तो नहीं है, किसी को आंसू, क्या कहा बाबा ने, क्या शब्द है बाबा के, आंखों में आंसू तो नहीं भरते, ऐसे कहा ना। तो ये तो शिव शक्तियों से बात की, फिर रोने के ऊपर मुरली चली। उसके बाद उसके पहले ऊपर
सफलता की बात, सफलता
के साक्षी और साथी, दो बातें हैं, एक है साथी एक है साक्षी, वहाँ पर ही है। तो साथी के लिए क्या कहा और साक्षी के लिए क्या कहा,
साथी
बाप साथी है तो साक्षी नहीं,
बाप साथी है तो जैसे बाप साक्षी है तो तुम भी साक्षी रहोगे, क्योंकि उसके साथ अगर पार्ट है तो जैसे वो साक्षी होकर सारे ड्रामा को देखता है, उसको बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होता है इस ड्रामा को देखकर, उसको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मोहम्मद गजनवी क्यों मेरे मंदिर को लूट रहा है, जाके मैं बचाऊं, मेरा ही तो मंदिर है। उसको दुख नहीं होता है किसी भी कोई भी चीज देखकर, क्यों ये मेरी इतनी ग्लानी कर रहे हैं। तो वो अपनी साक्षी स्थिति में रहता है, जो साक्षी होकर इस ड्रामा को देखते हैं उनकी ही स्थिति मधु समान मीठी होती है। साक्षी स्थिति अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है, सबसे ऊंची अवस्था, सब कुछ साक्षी होकर देखना।
सभी स्थितियों की वो
ये एक्चुअली रिजल्ट है, ये सारी साधनाएं करने के बाद जो स्थिति है साक्षी, वो एक रिजल्ट है उसकी कि हम ऑटोमेटिक साक्षी हो गए, जो कुछ देख रहे हैं ऐसा उसमें हम इंटरफियर नहीं कर रहे। कुछ पूर्ण ज्ञान चाहिए, जो पूर्ण ज्ञानी है वही साक्षी हो सकता है। उसमें रोना नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। वो उसने ये जो ड्रामा बनाया इतना परफेक्ट बनाया है कि अगर जो एक्टर्स है जो एक्टिंग करते फिल्मों में, वो जब अपनी मूवी देखने जाते तो रोते थोड़ी है, तब वो ये क्या सोचते हैं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, वो ये नहीं सोचता कि मेरा ऐसा पार्ट है जो मुझे उसने मारा, वो ये भी नहीं सोचता ये विलियन क्यों आ रहा है। ये ड्रामा ही हार जीत का बना हुआ है, ये बनाया ही ऐसा है। अगर ये केवल सुख का बना होता तो क्या होता, कोई डायरेक्टर ऐसी मूवी बनाता है कि जिसमें केवल खुशी खुशी है, कितने लोग जाएंगे देखने। तीन घंटे की मूवी बनी, एक परिवार है, बेटा माँ बाप बच्चे, फिर बड़े हो गए, शादी हो गई, सब ठीक चल रहा है, खींच खींच के तीन घंटे चला है, बाकी भी पहले भी खुशी थी, बीच में भी खुशी, अंत में भी खुशी। अभी ऐसी मूवी कितना दिन चलेगी बोलो, फ्लॉप। अभी ये तो सबसे बड़ा डायरेक्टर है, इसकी मूवी तो सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होना चाहिए कि नहीं, फाइव स्टार मिलने चाहिए मूवी को, तो उसमें भी तो ऐसी जबरदस्त मूवी बनाएगा ना वो। उसमें तो सब प्लॉट्स होते हैं, इसमें तो असंख्य सब प्लॉट्स है, छोटी छोटी स्टोरी है,
क्लाइमेक्स भी नहीं,
बहुत सारे क्लाइमेक्स आएंगे। इसमें विलियन भी जरा पावरफुल है, उसमें एक एक्टर होता है। अगर कोई डायरेक्टर अपने मूवी में चार पांच एक्टर्स डाल दे तो बड़ा लोगों को आकर्षण रहता है वो मूवी का, कि इस मूवी में सात आठ एक्टर्स है। इसमें तो असंख्य हीरो पार्ट जारी है, कितना भयंकर ड्रामा, जबरदस्त ड्रामा उसने बनाया है। और तुम कहते हो कि ये सीन बहुत खराब है, बाप को ड्रामा पसंद है तो उनको भी ड्रामा पसंद आना चाहिए। बाबा को इस ड्रामा की कोई भी सीन देखकर दुख नहीं होता है, क्योंकि वो साक्षी है। तो जो साथ है वही साक्षी है। जीवन में जीवन साथी को ढूंढते हैं, जीवन साथी की तलाश,
दर्शन के लिए
इसके लिए वेबसाइट है। हाँ, वो भी एक पॉइंट है, ये भी पहले ये ले लेते हैं। जीवन साथी की तलाश वेबसाइट बनी है बहुत सारी, जीवन साथी की तलाश इंटरनेट फेसबुक पर भी जीवन साथी की तलाश होती है, व्हाट्सएप पर भी होती है, उसमें शादियां भी होती है, फिर टूटते भी है, फिर उसमें धोखाधड़ी भी होती है, सब कुछ होता है।
bkshanti.com।
हाँ, वो मैट्रिमोनी एक नया भी बनाया है, अपनी कुमारी बीके के लिए अच्छा कुमार चाहिए एकदम पक्का। ऐसे भी माँ बाप है, कोई अच्छा कुमार होगा एकदम धारणा वाला चाहिए सहारे के लिए। माँ बाप अपनी बेटियों के लिए अच्छा कुमार देखते एकदम पक्का चाहिए, बाबा का बच्चा पूरा कि जो एकदम धारणा वाला हो। वही तो चाहिए,
सारे संसार का फाउंडेशन तो हम ही है ना,
यही तो माया है। बाबा से बच्चे कहते हैं साकार मुरली, बाबा से बच्चे, बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा। माँ बाप नाराज होते हैं शादी करें शादी नहीं करने के, तो बाबा कहते हैं भले करो डैश डैश डैश। आगे की लाइन है, बाप की याद में अगर सर भी कट जाए तो ऊंच पर पाओगे। साकार महावाक्य बाबा की, बाप की याद में अगर सर भी कट जाए तो ऊंच पद पाओगे। पूछते हो शादी करना करो, इसका मतलब दिल है। इसके लिए अभी नया बना है मैट्रिमोनी, अच्छा कुमार कोई हो वो चाहिए। मैट्रिमोनी bk.com। तो जीवन साथी को ढूंढते हैं, जीवन साथी की तलाश करते हैं, और फिर उस जीवन साथी को आधार बनाया जाता है, वो है विनाशी, ये है अविनाशी साथी। स्वार्थ है तो सबसे पहले तो सफलता स्वतः ही है, जो जितना साथ है वो उतना समीप संबंध में रहेगा। साथ की क्या क्या बातें हैं, जो जितना साथ हो उतना समीप संबंध में रहेगा, जो जितना साथ है वो उतना वो साक्षी भी है, साथ है तो उसके समान उसके साथ है ना, तो वो साक्षी है, इसके लिए हम भी साक्षी है फिर, क्योंकि उसके साथ रह रहे हैं। और जो साथ है वहाँ सफलता भी स्वतः ही है। संसार में क्या करते हैं भक्त, अल्पकाल का दर्शन, अल्पकाल का अनुभव, अल्पकाल का दर्शन या झलक, झलक दर्शन और अल्पकाल का दर्शन प्राप्तिक अनुभव करना चाहते, साथ का अल्पकाल का अनुभव, और तुमको सदाकाल का संबंध। यहाँ है संबंध है सदाकाल का, वो है अल्पकाल का, वो है जिज्ञासु, तुम हो अधिकारी। जहाँ प्राप्ति हुई नहीं है सब है जिज्ञासु, ढूंढ रहे अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है। विदेश के लोग आते हैं भारत में, ये भगवान क्या होता है, ये वेद क्या है, ये उपनिषद क्या है, उनको कोई भक्ति नहीं है हृदय में, जानना चाहते जब जिज्ञासा है, ये क्या है, ये संस्कृति क्या है, ये धर्म क्या है, जानने की इच्छा है। गीता में भगवान कहते मेरे चार प्रकार के भक्त है। सबसे पहला भक्त जो रोज आता है मंदिर में और क्या मांगता है, मुझे धन दे दो, पैसे दे दो, पत्नी दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पर भगवान कहते हैं आता तो मेरे ही पास है ना, इसके लिए वो भी मेरा भक्त है। दूसरा भक्त जो केवल संकट के समय आता है, बाकी भूला रहता है, संकट आ गया कि हे प्रभु कहाँ हो। कुछ दिन पहले मुरलियों में था ना, बाढ़ आती है तो भगवान को याद करते, हे भगवान, पर उस समय बाप को याद नहीं कर सकते, उस समय महल माड़िया याद आती है, ये भी बोला था उसने मुझसे। तो ये दूसरे प्रकार का। तीसरे प्रकार का भक्त है जिज्ञासु भक्त, जिनको केवल इच्छा है क्या है ये, बस ये ब्रह्मा कुमारी क्या है इसको जानना चाहते, वो कोर्स में क्या होता है वो सब कोर्स समझना चाहते हैं, पर कोई भक्ति ये नहीं है कि भगवान को पाने की इच्छा नहीं है, केवल जानना चाहते हैं नॉलेज के लिए। कई लोग टूरिस्ट आपको मिलेंगे कहेंगे हाँ हमने भी कोर्स किया है, हमने राजीव हमको भी आता है, हम भी सेंटर में कभी कभी जाते हैं। तो ना तो कोई लेना देना किसी से, स्टेटस का क्वेश्चन है ना कि सब लोगों को पता है और मैं मुझे पता नहीं ब्रह्मा कुमारी के बारे में।
तो
हम तो रोज देखते हैं, हम तो रोज सुनते भी है, हमको तो पता है सर, ऐसा मत समझना हमको कुछ नहीं आता है और तुम आगे चले गए अध्यात्म में। यहाँ भी अभिमान की बात होती है ना, कोई अपने आप को अध्यात्म में भी नीचे नहीं देखना चाहता, वो बोलते हम भी करते हैं सर। तो जिज्ञासु भक्त, और तीसरा है ज्ञानी भक्त, जो सच्चे हृदय से मेरी आराधना करता है। मन मना भव मध्याजी भक्ता माम नमस्कुरु, जो केवल मेरे चिंतन में रहता है। मन मना भव मध्याजी भक्ता माम नमस्कुरु, जो केवल पांचवा में अभी बहुत सारे निकाल सकते हैं, पर गीता में चार
है। भगवान याद करता है,
भगवान जिनको याद करते हैं। कहाँ थे हम? साथी और साक्षी। तो वो लोग किसके प्यासे हैं? दर्शन के। हे एक नजर के प्यासे तूने क्या कर दिया, दिल में बसा लिया, चरणों में जगह मांगी थी, तो क्या कर दिया उसने, दिल में बसा लिया। उल्टा तो नहीं कर दिया ना यहाँ आने के बाद? कोई कोई का उल्टा भी हो गया है, दिल में जगह मांगी थी यहाँ आने के बाद चरणों में बिठा दिया। क्या सोच कर आए थे और ये क्या हो गया यहाँ आकर, ऐसे भी है कुछ कुछ है कि नहीं होंगे? चरणों में थोड़ा सा मांगे ना इतना कुछ दे दिया। वो लोग दर्शन के लिए प्यासे हैं, झलक के लिए प्यासे हैं, अल्पकाल के साथ के अनुभव के लिए प्यासे, और तुमको तो सदा काल का संबंध मिल गया एक सेकंड में। और वहां पर वो आने को कितना टाइम लगाते हैं, वो साथ भी नहीं है और आने को भी टाइम लगाते हैं पहुंचने में, यहाँ बाप एक सेकंड में और सदा पहुंच सदा है और एक सेकंड में पहुंचते हैं। संसार के साथी एक सेकंड में आ सकते हैं क्या? आज फोन लगा हमको बहुत बीमार है आ जाओ,
पहले सोचेंगे आज जाए या नहीं जाए।
क्यों अचानक फोन कर लिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बोलेंगे देखते बाद में आएंगे। बाबा सदा साथ है और एक सेकंड में पहुंचता है, एक सेकंड में आता है, और वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो उधर है जिज्ञासु, इधर है अधिकार, इधर है सदा और एक सेकंड में आना, उधर है कभी कभी आना, सदा तो है ही नहीं, देर से आना या ना आना,
भरोसा नहीं आया नहीं आया,
भरोसा नहीं है, संसार का कुछ भरोसा नहीं है, शरीर छोड़ने के बाद आएंगे, सोचेंगे अच्छा कि गया ये, और रोएंगे इतना कि बात मत पूछो। एक व्यक्ति था अपनी उसकी पत्नी पर गया, इतना रो रहा, लोगों को लगा क्या है ये इतना प्यार, कभी देखा ही नहीं इतना प्यार किसी पति का अपनी पत्नी के लिए, इतना रो रहा है। और 15 दिन के बाद शादी का कार्ड लेके दूसरी शादी। ये संसार की स्थिति है, आश्चर्य। फिर और एक बात, ये यहाँ पूरा हुआ तो उसके ऊपर ऊपर जा रहे हैं हम, नीचे से
ऊपर जा रहे हैं।
फिर बाबा हाँ वो भी एक है, जन्म जन्म का साथ, ये तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है, परंतु शिव बाबा आगे जाके साक्षी हो जाता है और ब्रह्मा बाबा तुम्हारा साथ ही बन जाता है, ये भी एक पॉइंट है। फिर ब्रह्मा बाबा की और एक विशेषता यहाँ सुनाई, किसके लिए? पहले मुरली पहले से चालू करते नहीं तो क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है। चलो चालू कहाँ से हुई मुरली? राजू भाई आज की मुरली स्मृति की समृद्धि से क्या करना है? समृद्धि अर्थात शक्ति, स्मृति की शक्ति, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मृति समृद्धि शक्ति बल सामर्थ्य। अलग अलग शब्द जब जोड़ते ना तो ज्यादा क्लियर होता है, तो सारा समझ में आता है वो, नहीं तो स्मृति की समृद्धि क्या है पता नहीं। तो स्मृति की शक्ति से, याद की शक्ति से, याद की समृद्धि से क्या करना है? तीन स्थिति तीन स्थान का सहज अनुभव होता है। बाबा ने पूछा बीच के स्थिति का छोड़ दिया, फिर दो स्थिति पर आ गए, साकार और निराकार। तो जैसे साकार में स्थित होना सहज अनुभव होता है, वैसा ही निराकार अनादि स्थिति में भी अविनाशी, एक अविनाशी स्थिति है वो, एक अविनाशी स्थिति में भी अनुभव स्थित होना इतना सहज है। जैसे यहाँ अपनापन लगता है, जैसा ये नेचुरल है, क्या शब्द यूज किए बाबा ने? एक तो सहज, यहाँ पे रहना सहज, दूसरा शब्द नेचुरल, और तीसरा शब्द अपनापन। वैसा ही अनादि निराकारी स्थिति में स्थित होना सहज हो, दोनों समानता हो दोनों स्थितियों में।
वो होती क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो वहाँ थोड़ा टाइम ही रहे
पर संगम पे तो रहे ना हम ज्यादा, कुछ कुछ नंबर वार
5000 वर्ष और ये थोड़ा सा टाइम
वो भी है। इसके लिए ना जो आत्मा ऊपर ज्यादा रही है ब्रह्म में, वो जब द्वापर में उतरती है तो वेदांत शास्त्र उन्हीं का रचा हुआ है। ऐसी जो आत्माएं हैं कि जो कहती है ब्रह्म 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 ज्ञानी सर्वखल्विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सारे वेदांत शास्त्र ब्रह्म के ऊपर बना हुआ है, जितने लोग हैं सब ने ब्रह्म ब्रह्म ही कहा हुआ है कि ब्रह्म चैतन्य है। बाबा आके बता रहा है ब्रह्म चैतन्य नहीं है, ब्रह्म जड़ है, ब्रह्म घर है। उन्होंने कहा ब्रह्म परमात्मा है, बाबा ने कहा ब्रह्म परमात्मा नहीं है। जैसे सन्यासियों ने ईश्वर और ब्रह्म को एक कर दिया, वैसे ही हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदुस्तान को अपना हिंदू धर्म कह दिया। मुरली में था ना दो तीन दिन पहले ही। तो ये जो ब्रह्म है ये तत्व है, परंतु क्योंकि वो आत्मा लंबा 2500 साल ऊपर रही, जब नीचे आई तो अभी वो उधर ही उधर का ही अनुभव उनको ज्यादा है ब्रह्म का। इसके लिए जो भी सिद्धांत बनाए गए वो सब में ब्रह्म है, कि ईश्वर ब्रह्म है। इस संसार को भी उन्होंने क्या कहा? ब्रह्मांड। इस संसार को कहा, बाबा ने कहा ये संसार ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड वो है। उन्होंने कहा आत्मा ही ब्रह्म है, क्यों? क्योंकि आत्मा वही रही है लंबा समय, तो उसको लगा कि मैं और ये एक ही है वातावरण और वो, तो उसने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, तत्वमसि तू वो है। शंकराचार्य का थियरी क्या है? अद्वैत वेदांत यही है ना, सब कुछ ब्रह्म है, ये जो कुछ दिख रहा है सब, ये मोबाइल भी ब्रह्म है और ये भी ब्रह्म है, नाम और रूप के कारण अलग भास रहे हैं और ये नाम रूप माया है। अगर ये नाम रूप इसमें से हटा दिया जाए तो ये और ये एक ही है। ये है अद्वैतवाद, मोनिज्म, अद्वैतवाद, मायावाद, नॉन डुअलिज्म जिसको कहा जाता है, जो सबसे पहले शंकराचार्य ने रखा अद्वैतवाद, उसी के लिए उसका जन्म हुआ था कि सब ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सर्व खलविदम ब्रह्म। और ये ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये और वो एक जगत ब्रह्म, ब्रह्म ही है जगत, परंतु नाम और रूप के कारण जगत भास रहा है, वो है ब्रह्म पर जगत भास रहा है, ये भासना मिथ्या है। जैसे रज्जू और सर्प का उदाहरण देते हैं, वहाँ पे सांप है, ये रस्सी है, पर अंधकार के वजह से वो सांप भास रहा है परंतु वो है नहीं। वैसे ये जगत जो है ना, ये सत्य भास रहा है परंतु सत्य नहीं है, परंतु भगवान जब आता है तो कहता है ये जगत सत्य है। ये सांप सांप ये बाबा की थ्योरी कि जगत स्वप्नव्रत नहीं है। सन्यासियों का कहना है ये जगत स्वप्न है, परंतु बाबा ने कहा नहीं, ये जगत सत्य है। आत्मा का अपना अस्तित्व है, जगत का अपना अस्तित्व है, ईश्वर का, जीव जगत ईश्वर तीन अलग अलग अस्तित्व है। उनका कहना है जीव जगत ईश्वर तीनों एक है, ये अद्वैतवाद। उसके बाद एक दूसरा वादा है रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत, वो कहता है कि आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में। उसके बाद में तीसरा वादा है माधवाचार्य, वो कहता है नहीं आत्मा हमेशा अलग है, परमात्मा हमेशा अलग है। उसको कहा जाता है द्वैतवाद, जो कि हमारा भी द्वैतवाद है, ब्रह्मा कुमारी अर्थात द्वैतवाद। आत्मा और परमात्मा कभी अलग नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते, अलग अलग है, वो है द्वैतवाद। उसके बाद में आया निम्बार्क, उसके बाद में आया वल्लभाचार्य को याद किया तो कुछ दिन पहले बाबा ने, वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद कि वो हमेशा से ही अलग है, परमात्मा और आत्मा अलग है, और वो परमात्मा है वो कृष्ण है और दूसरा कोई नहीं है। उसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है, पुष्टि पंथ या अनुग्रह मार्ग वल्लभाचार्य, जो अपने आप को बाबा ने कहा ना अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते, हाथ नहीं लगाने देते, टच नहीं करने देते, बस तुमको इस शरीर को टच भी नहीं करना है। उसके बाद ये वाक्य के बाद बाबा ने याद किया ना अभी परसों दो तीन दिन पहले, वो बड़ा समझते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं, पर उनको क्या पता ये शरीर ही पति से भ्रष्टाचार में उत्पत्ति है इसकी। तो वो है शुद्ध अद्वैतवाद। उसके बाद में और चैतन्य महाप्रभु आए, अचिंत भेद अभेदवाद, और एक भेद और एक वाद है, इस तरह से एक के बाद 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 एक, और इस तरह भक्ति ने अपने विस्तार को पाया कुछ कुछ समय के बाद, और ये संसार यहाँ आके पहुंचा। तो बाबा ने ब्रह्म के लिए अलग कहा है, ब्रह्म जो है वो तत्व है, सन्यासियों ने वेदांतवाद ने कहा वो चैतन्य है, आत्मा है वहां रहने का स्थान है, इन्होंने कहा वो रहने का स्थान है, सब कुछ ब्रह्म है, लीन उसमें आत्मा चार, ना तो आत्मा आत्मा में लीन होती है, ना तो आत्मा परमात्मा में लीन होती है, ना आत्मा प्रकृति में लीन होती है, और ना ही आत्मा ब्रह्म में लीन होती है, चारों चीजों में वो लीन नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का अपना अस्तित्व है, अगर वो लीन हो जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसके लिए नहीं हो सकती होगी। मोक्ष और मुक्ति में अंतर है, मुक्ति अर्थात क्षणिक, परमानेंट मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है, इसके लिए बाबा ने कहा मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता, पर सन्यासी होने का सिद्धांत क्या है, मोक्ष, मोक्ष के लिए ही सारी सारा कुछ है, जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ मोक्ष के लिए, जगत हिताय कुछ तो है ऐसा मोक्ष के लिए, तो सब कुछ मोक्ष के लिए वहां पर। तो यहाँ तो मोक्ष का कॉन्सेप्ट निकाल दिया बाबा ने, और जगत को सत्य कर दिया, और ब्रह्म को ऊपर भेज दिया, और खुद भी ऊपर बैठ गया, तो ऐसा है। तो कहाँ थे हम,
निराकार
स्थिति, तो ज्यादा से ज्यादा उस स्थिति में स्थित होना है, कहाँ पर, ब्रह्म में। ब्रह्म मुहूर्त का एक बाबा की अव्यक्त महावाक्य है, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात ज्यादा से ज्यादा समय ब्रह्म में स्थित होना, अमृत वेला किताब जो है ना, ब्रह्म में स्थित होना हम सुबह सुबह, तो वो स्थिति में जो ज्यादा समय स्थित रहेगा उसी को बाबा ने क्या कहा, संपूर्ण अंतिम संपूर्ण अवस्था उसी को कर्मातीत तेज, और अभी की बाप दादा के समान नजदीकता, कल्प कल्प की समीपता का आधार है, जितना आप बनाना चाहो प्रारब्ध बना लो, कहाँ कहाँ समीपता होगी, सबसे पहले तो राज्य अधिकारी में, फिर भक्ति में, भक्ति में, भक्ति के पार्ट में, पूज्य बनने में, पुजारी बनने में, भक्ति के पार्ट में किसके साथ, जो हीरो पाठधारी है, जो आदि का पाठधारी है, जो आदि की आत्मा है उसके साथ, ब्रह्मा के साथ समीप संबंध में आएंगे, आगे पीछे आएंगे या समीप संबंध में आएंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, अंग संग आएंगे, कुछ 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 आगे पीछे आएंगे, कुछ कुछ निकटवर्ती क्षेत्र में आएंगे उस आत्मा के, अखंड। फिर बाबा ने कहा ये जो है निकटता, समीपता का आधार, समीपता का आधार है श्रेष्ठता, और श्रेष्ठता का आधार है दो चीजें, दो नहीं तीन, तीसरी बात आगे है एक जगह, नष्ट मोह बनना, वो ब्रह्मा, वो भी आधार है समीपता का, तो तीन आधार है। तो सबसे पहला आधार, सबसे पहला आधार बाल परोपकारी, हो गया हमारे परोपकारी, और दूसरा बाल ब्रह्मचारी, जब से बाल्यकाल से, कब के बाल्यकाल से, जन्म के नहीं, ज्ञान के जन्म से, मर्जी में जन्म के आदिकाल से, जब से बाबा के बने तब से, बाबा ने क्या पूछा, तब से अखंड है क्या ब्रह्मचर्य, स्वच्छता का ब्रह्मचर्य को बाबा ने, इसी को फॉलो फादर भी कहा, रजिस्टर को देखने को बोला कि रजिस्टर साफ है, दागी तो नहीं हो गया। कौन करता है सबसे पहला दागी? वृत्ति की चंचलता ही पहली हार है। वृत्ति की चंचलता, फिर है दृष्टि और फिर है कृति। तो दृष्टि की चंचलता, वृत्ति की चंचलता, दृष्टि की चंचलता और कृति की चंचलता। तो सबका आधार सबसे पहले है वृत्ति। वृत्ताकार जो संकल्प उत्पन्न हुआ वो वृत्ताकार फैलता है, उसी को वृत्तिकार कह रहे हैं। तो वृत्ति को ही कंट्रोल करना है तो ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं होगा। अगर ऐसे समीप है तो क्या होगा? जन्म जन्म आदि आत्मा के समीप में रहेंगे, एक तो ये। दूसरा फायदे तीन बताए। एक तो उस आत्मा के समीप रहेंगे सारे कल्प में, राज्य अधिकार में, भक्ति में, हीरो पार्ट में, भिन्न भिन्न नाम रूप में हम उसके साथ होंगे, एक तो ये। दूसरा परम पूज्य बनेंगे, और तीसरा और एक बात हो गया ना, वो पूज्य पुजारी हो गया, पूज्य पुजारी तो हो गया। और है जिनको नागेश भाई, जिनको जिनकी ब्रह्मचर्य खंडित है उनको प्राप्तियां भी खंडित होगी। तो जिनका अखंड है उनकी अखंड प्राप्ति है, सर्व प्राप्ति अखंड प्राप्ति है। तो तीन बातें हैं, सबसे पहला तो समीप रहेंगे सारे इसमें, दूसरा परम पूज्य बनेंगे और प्राप्तियां भी अखंड। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ब्रह्मचर्य सदा के ब्रह्मचारी हो या ब्रह्मचारी हो? ब्रह्मचारी कभी खंडित नहीं हुआ। खंडित मूर्ति की पूजा होती है क्या? कहाँ रखा जाता है खंडित मूर्तियों को? म्यूजियम ऐसे हाथ रख के देखते हैं म्यूजियम को। और जो मंदिर में होंगे उसके आगे झुकते हैं, झुक झुक के तो तुम्हारे टिप्पड़ गिर गए। तो मंदिर की जो मूर्ति होती है वो खंडित मूर्ति कभी नहीं रख सकते। वहाँ पे झुकते हैं लोग, बड़े बड़े लोग झुकते हैं, और वो जो टूटती है तो म्यूजियम चली जाती है, उसकी खाली फोटो लेते हैं बस, देते होंगे।
आजकल तो जो मंदिरों की में देवताओं की मूर्तियों को चोरी करके बेच देते हैं,
चोरी
देवताओं को बेच रहे हैं।
तो जैसे वहाँ खंडित मूर्ति का महत्व कम हो जाता है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी खंड हो। वो बाल ब्रह्मचारी संसार के, उनका भी कितना महत्व है, उनको भी कितना श्रेष्ठ पद है, बाप भी उनको मान देता है। जो भी पवित्र रहेगा इस ड्रामा में उसको भगवान का मान मिलेगा। जो भी चाहे ज्ञान में हो या न हो, जो भी पवित्रता का धारण करेगा उसको मान मिलेगा भगवान का। हाँ वो प्रसिद्ध होंगे, पूज्य होंगे, श्रेष्ठ होंगे, ऐसे बाल ब्रह्मचारी। और क्या बोला? नहीं इसमें ना, और एक वृत्ति, वृत्ति की ब्रह्मचर्य, वृत्ति का ब्रह्मचर्य।
अपवित्रता न हो
जरा भी, संकल्प में भी अपवित्रता नहीं। उस दिन बोला ना, बस इस देह को टच ही नहीं करना। सतयुग त्रेता से तो तुम कलयुग तक देह में लटके हुए हो।
वृत्ति को चंचल न कहा,
वृत्ति, वृत्ति मतलब संकल्प में अपवित्रता अर्थात देह का आकर्षण। 69 की मुरली है, बाप से तुमने बहुत वायदे किए, अब अपने आप से वायदा करो कि आज से
मस्तक
मणि के सिवाय और कुछ नहीं देखेंगे। 69 की
याद रहे ना, तुम तो याद रहे
वायुमंडल बना हुआ
था, रोज याद रखना है, रोज याद रखना है। जैसे वो पादरी हमेशा याद रखने के लिए उसका निरंतर चिंतन चलता रहे, उसका निरंतर याद रहे कि ये देह क्या है। देह पस से भरा हुआ है, पीप से भरा हुआ है,
ममाद से भरा
हुआ है, चरांद है इसमें, मल मूत्र से भरा हुआ है ये शरीर, फेंका हुआ, थूका हुआ, सड़ा गला, बेकार वस्तु। संकल्प में जिसको त्याग कर दिया, तुमको संकल्प से भी उसको स्वीकार नहीं करना है वापस।
रहम आ जाता ना, इसलिए हो जाता है।
अच्छा अच्छा लगता है। अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आत्मा में विकार के संस्कार भरे हैं। इसको जैसे ही कोई ट्रिगर मिल जाए, यहाँ पे कोई टीवी में कोई सीन दिख जाए, कोई किताब मिल जाए, कोई पिक्चर दिख जाए, कोई फोटोग्राफ दिख जाए, ये सारे ट्रिगर्स है उसके। ये दिखा कि वो ज्यादा है अंदर सबकॉन्शियस में, वो उसकी दोनों की रिएक्शन होती है और वो फिर संकल्प में आता है, फिर दृष्टि वृत्ति कृति सब में आ जाएगा, फिर इच्छा उत्पन्न होती है। क्या होता है देखना, देखू जरा हाथ लगा के क्या होता है क्या है ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है इसको जानने की। खराब भाव नहीं है, जिज्ञासा है कि क्या है क्या ये, और वो जिज्ञासा ही उसको खींच खींच के कहाँ से कहाँ ले जाती है। तुमको देखने की जरूरत ही नहीं है, दूसरों ने बोल दिया ना आग में हाथ जलता है, बस सीख लो उससे ही, खुद जलाने की जरूरत नहीं है, जरा देखो क्या होता है। हाँ बस वो विष है, विष का सेवन वापस नहीं करो।
बाबा ने कहा था ना कि किसी के हाथ में ऐसी वो बुक देखो, नोवेल देखो,
फाड़ फाड़ दो कहीं पर भी वृत्ति ना जाए, दृष्टि ना जाए, देह को देखो ही नहीं, यही सबसे अच्छी चीज है। बस देह को दिखे तो बस ये यहाँ तक देखो।
वो तो बोले सुखा सन्यासी, सुखा सन्यासी बोलेंगे
कुछ दिन बोलेंगे,
बोलने दो,
फिर ठंडे हो जाएंगे वो, बोलेंगे
बोलने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। काजल की
यहाँ से
काजल की कोठरी में क्या
मस्तक
काजल की कोठरी में क्या काजल की कोठरी में डाग लागे ही लागे, कितना सती हो कोई कितना रती हो कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे। हे जी रे गीत है ना, रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। उस गीत की अंतिम लाइन ही है, काजल की कोठरी है ये संसार, इधर से बचो तो इधर लगता है, इधर बचो तो इधर लगता है, काजल तो लगने वाला एक कोठरी है, अब कितना भी बचो कहीं से तो लगेगा ही, तो बचा बचा के चलना है, फूक फूक के कदम रखने हैं। केवल इसमें खुश नहीं हो जाओ कि ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन कर लिया, वरदान था ना, केवल इसमें खुश नहीं हो जाओ, ब्रह्मचर्य तो पवित्रता तो फाउंडेशन है, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता पर अंडरलाइन करो, तुम्हारा एक एक संकल्प शुद्ध, तुम्हारा एक एक संकल्प ज्ञानवान, तुम्हारा ज्ञान स्वरूप, तुम्हारा एक एक संकल्प शक्तिशाली हो। अगर कमजोर पर संकल्पों में कमजोरी है, अब इस कमजोरी को समाप्त करो, इन व्यर्थ विकारों के व्यर्थ संकल्पों को बाप पर न्यौछावर करो, दूसरा वरदान कहीं तो ये दे दो बाबा को, ये है प्यार का सबूत, बाबा तुम्हारी गलती नहीं देख सकते, जो प्यारा है उसकी कमी नहीं देख सकते, उसकी गलती नहीं देख सकते, बाप चाहते हैं तुम भी बाप समान संपन्न संपूर्ण बनो, तो बाप की चाहना है ब्रह्मचर्य संपूर्ण पवित्रता, बाप तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते,
कोई तकलीफ
बस अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, बस तुमको अपने चरित्र सुधारने, बाप तुमको कोई तकलीफ थोड़ी देते, तुम जैसे बड़े आदमियों को तकलीफ, अरे कभी नहीं, नेवर ना, कभी मैं तुमको तकलीफ देता ही नहीं हूँ, सुबह सुबह एक दो बजे उठ जाओ बड़े मस्ती से बाप को याद करो, बाप तुमको तकलीफ थोड़ी देते, सुबह सुबह उठ के बस टहलो जरा, पादरी कैसे अकेले में घूमते, वैसे तुम सुबह सुबह बाबा से बातें करो, बाबा तुमको तकलीफ देने थोड़ी आया है, ज्ञान मूल्य तो तुमको रोज सुननी है, चाहे मरने को हो पर ज्ञान मूल्य सुनने जरूर आना है, अगर पैर फ्रैक्चर हो तो स्ट्रेचर पर लेके आओ, बाप तुमको तकलीफ थोड़ी देने आया है, कितना सहज है, तुम जैसे बड़े आदमियों को तकलीफ
नहीं,
याद करते करते एक एक गिट्टी भाग की याद में खाना है तुमको, ये कोई तकलीफ है, कितना छोटा काम है, बाप की याद में बनाना है और बाप की याद में खाना है, बीच बीच में भी तुमको रूहानी ड्रिल करनी है, एक सेकंड में अशरीरी हो जाओ, बीच बीच में 5 मिनट की ड्रिल कर लो, 10 मिनट ड्रिल कर लो, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, बस
4 घंटे
से तुम थोड़ी ना लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुमको तो निरंतर बाप को याद करना है, श्वासो श्वास बाप की याद हो,
थोड़ी सी
ये कोई तकलीफ है,
थोड़ी सी
मैं तुमको तकलीफ तो दे ही नहीं सकता
सारा दे
बोला है कि जो बाप की याद में पूरा भोजन करते हैं वो मेरे बहादुर है। बहादुर
लोग तुम्हारी ग्लानी करेंगे, तुम पर पत्थर फेंकेंगे तो क्या करो उनको? माला पहनाओ, फूलों की माला। ये कोई तकलीफ है? कितना छोटा सा काम है।
नहीं उस स्थिति में बाबा सोचकर बोलते हैं, मेरे समान स्थिति में तो छोटा ही काम होगा।
छोटा ही है इसी पे तो वही तो कह रहा हूँ मैं, तकलीफ कहाँ है? बोल ही नहीं रहा हूँ तकलीफ
है। उसी के लिए तो मेरे
काम है ना,
क्या
उसको वनवास भेज दिया?
ज्ञानी भी अंत में ही बताओ
चंद्र को
तो वनवास भेज दिया तो है? उसको तकलीफ नहीं हुई ना? हाँ, खुशी खुशी से चला गया।
कोई चीज के बारे में
याद की फांसी में तुमको लटके रहना है बस, ये कोई तकलीफ है? छोटी सा काम है।
तकलीफ ही खत्म हो गई, फांसी लग गई तो।
तुम जैसे बड़े आदमियों को तकलीफ सोचेंगे भी नहीं बाप तो। अरे जानवर भी अपने बाप को याद करते, तुमको तुम अपने बाप को याद नहीं कर सकते? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमको लज्जा नहीं आती?
बड़े आदमियों को मेहनत की बात है और इधर शर्म नहीं आती?
मेहनत करने वाले मजदूर हो क्या?
अधिकारी हो
तुम? अधिकारी हो? बड़ी मस्ती से बाप की याद में सो जाओ। अगर किसी से बात करना तो अगर रात में अगर नींद खुले तो विश्व को सकाश, तो तुमको तो विश्व की आत्माओं की सकाश, प्रकृति को भी सकाश देनी है, बड़े बड़े काम करने हैं तुमको, तो बाप तो तुमको तकलीफ दे ही नहीं सकते कभी। कि तकलीफ ही तकलीफ है,
पूरा गिनती आपने किया तो तकलीफ ही तकलीफ
है। और क्या बोला? अरे जब तक तुम किसी को ज्ञान नहीं सुनाओ तब तक भोजन तो करना ही नहीं चाहिए तुमने।
बड़े आदमियों को कितना अच्छा होगा।
चलो आगे कहाँ थे? पवित्रता, ब्रह्मचर्य हो गया, परोपकार हो गया, फिर उसके बाद में टीचर्स से मुलाकात। क्या बोलते हैं बाबा टीचर्स को? हाँ वो हो गया पूरा, वो पहले ही हमने वहाँ से गीत चला है उसके तरह। टीचर क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं। उनको क्या मिला है? लिफ्ट मिली है। कौन सी लिफ्ट? लिफ्ट कौन सी मिली है? एक सेकंड, संकल्प किया और स्वरूप में स्थित हुए, ये है लिफ्ट। आगे है ना, लिफ्ट कौन सी है? संकल्प किया और स्वरूप में स्थित हुए, एक की याद में मगन, एक की याद में, एक की लगन में मगन, एक की सेवा में, तो एक ही एक तो एक रस हुए ना। और एक क्या क्या है? एक का पार्ट कौन कौन से है? एक की याद, एक की लगन, एक की सेवा, एक मत, एक बल, एक भरोसा, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा मैं तीसरा ना कोई, एक के प्रति समर्पण भाव, एक से सर्व संबंध,
एक से लव,
एक भाषा, एक राज्य, वो आगे, एक मत आगे, एक नौमी, एक नौमी, एकाग्रता, एक व्रता, अंतर्मुखता, एकांत, एक के अंत में खोना, ये सारे है एक 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 एक। इसके लिए बाबा ने कहा ना एक में तो कितना सहज है,
सारा एक में
है, बस एक ही है। बाप के सिवा तुमको किसी को याद नहीं करने, अगर किसी को याद करते हो तो वो भी विकर्म है।
बाप
तुमको तकलीफ तो बिल्कुल नहीं देते। किसी भी देहधारी को याद मत करो, देह सहित देह के संबंध को भूल जाओ। दुनिया में सब मरे पड़े हैं, सब टेम्पररी है, भूल जाओ। ये कोई तकलीफ
नहीं,
बिल्कुल तकलीफ नहीं।
बाबा थोड़ा को ड्रामा कैसेट को फॉरवर्ड करके आगे से देख के बता रहे हैं कि सब मरे पड़े हैं।
फिर बाबा के तो तुमको गुण गाने चाहिए। टीचर से बाबा आगे बोल रहे हैं, वाह बाबा वाह ड्रामा वाह भाग्य, खुशी खुशी से खगिया मारने चाहिए। तुम्हें इतनी खुशी होनी चाहिए, अरे तुम्हें भगवान मिला है तुम्हें इतनी खुशी होनी चाहिए कि एक मुरली है तुम्हारे दिमाग की नस फट जानी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए तुमको। रोमांच डेड हो जाता बच्चों के, रोमांच
थोड़े
कुछ नहीं कर सकते। तो और कह रहे बाबा को, टीचर्स को क्या कह रहे, सदा बिजी रहने के कह रहे हैं। तो फिर तन का बंधन, मन का बंधन तो समाप्त हो जाएगा, सदा बिजी रहोगे, माया देखेंगे कि ये इनके पास फुर्सत नहीं है तो वो चली जाएगी, तो यही सेफ्टी का साधन बन जाएगा। आगे बोला ना, यही सेफ्टी का साधन बन जाएगा। तो माया आएगी नहीं, पर तुम क्या करते हो, माया को क्या पिलाते हो, चाय पानी पिलाते हो, तो उसको लगता है कि मैं अभी यहाँ रहूं, तो तुम खातरी करते हो माया की। जब पर देखेगी कि ये बिजी है, इसके लिए बिजी रहना सबसे बेस्ट काम है। जो भाइयों को सेवा कम है उनको देखो, जिनको सेवा ज्यादा है और पुरुषार्थ भी कर रहे ऐसे भी है, बिजी रहना ही अच्छी बात है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी सेवा है बस 2-3 घंटे की है, पर वो याद भी नहीं कर सकते फिर, क्योंकि जो समय मिलता है फिर उसका महत्व भी नहीं होता इतना,
ज्यादा लगन
होती है,
उसकी ज्यादा लगन होती है, उसको इंतजार होता है कि कब यहाँ से, मतलब एक योग के लिए जाओ, योग करूँ, तपस्या करूँ, तो ऐसा है। तो जो जितना ज्यादा बिजी है उतना ही अच्छा है संगम पर, जिसके लिए बाबा ने सेवाओं का जो विस्तार किया ना इसी के लिए, नहीं तो ब्राह्मणों की बुद्धि यहाँ वहाँ भटकने को कितने चांसेस है, मोबाइल पे लगे रहेंगे, टीवी पे लगे रहेंगे, इंटरनेट पे लगे रहेंगे, सीरियल देखने में लगे रहेंगे, आकर्षण क्या कम है ब्राह्मण संसार में, वो है भक्ति की सामग्री, ये है ज्ञान की सामग्री, ये है ज्ञान की सामग्री सारी। बाबा कहते ज्ञान की सामग्री नहीं होती है वो, शास्त्र वो सब है, पर ये है पूरी माया नगरी है इधर, तो भटकने के चांसेस बहुत है। तो सेवा में बिजी रहना ये सबसे अच्छा काम है, जितना ज्यादा जो बिजी है उतना अच्छा, माया जीत भी बन जाएगा वो, बाबा की एक्स्ट्रा मदद है उनको, बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी, जो हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाते हैं, बाप की संपूर्ण मदद, जो सेवाओं में बिजी रहते हैं उनको एक्स्ट्रा मदद, तो बाबा भी मदद करेगा ऐसी आत्माओं। फिर और क्या बोला, टीचर्स को तो माया वार नहीं कर सकती, हार खाएगी।
मनोरंजन
कहाँ पर अभी है, आगे हजार है,
आगे आएगा।
फिर ब्रह्मा को याद किया कि ब्रह्मा का कौन सी विशेषता थी, नष्टो मोह, किससे नष्टो मोह, स्वयं से और सबसे दूसरों से, स्वयं से भी नष्टो मोह, देह से, देह को चाहिए ना, अच्छा अच्छा खाने को पीने को पहनने को घूमने को, ये देखूं वो देखूं इसको देखूं उसको देखूं, वो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, हाँ 10-10 जोड़ी, जैसे तुम हमारी आत्मा की एक ही जूती है वैसे तुम्हारे पास जूता भी एक ही होना चाहिए। एक मुरली थी अभी, आत्मा का जूता कितना, एक ही है ना, तुम्हारे पास जूता भी एक ही होना चाहिए। ब्रह्मा का जीवन तो अभाव में बीता ना पूरा, ब्रह्मा के पास क्या कुछ था क्या, सारा ही जीवन अभाव में है, जब से ब्रह्मा बना तब से, बाद में जब इधर आया तो सब बेगरी बेगरी चला ना, तो
वो जरूरी भी था, क्योंकि पहले तो जब दादा लिख रहे थे तब तो सब कुछ सुविधाएं थी, तो मन भर गया था ऑटोमेटिकली,
तो उसको वैराग बहुत पहले से आना चालू हो गया था, 32 से ही चालू हो गया, उसके भी पहले से ही धीरे धीरे वैराग आना चालू हो गया, सुविधाओं में एक्चुअली रस है ही नहीं, विषयों में रस नहीं, वो एक विषयों का सुख जो है ना वो, उसको कंपैरिजन उसके साथ किया था, जो झूठा चीज है ना, झूठन जिसको कहते हैं, ये झूठन है, मतलब देह जो है ना, अभी ये देह है, अभी ये देह मरने के बाद तत्वों में समा जाएगी, ये झूठा हो गया, फिर उन्हीं तत्वों से दूसरा देह बनेगा, फिर ये झूठन के झूठन का झूठन है ये देह, पर यही चाहिए। किसी ने खीर खा ली और उल्टी कर ली और उसको कहा कि इसको खाओ अभी वापस, बोलेंगे कुछ भी हो जाए ये नहीं खाऊंगा, तो बस ये वासना भी यही है, ये विषय वासना भी है, झूठा नहीं है, पर आत्मा को लगता है अरे वाह ये तो देह का सुख तो बहुत है,
रूप बदलते रहेंगे
पर वो देह देखो वो झूठा है, वो झूठा का ज्ञान ही नहीं है उसको, लगता है बहुत अच्छा लगता है वो कुत्ते को जो हड्डी चबा चबा के खा रहा है, चबा चबा हड्डी खाते खाते खून निकल रहा है, वो खून ही पी रहा है, उसको लग रहा है वो खून हड्डी से आ रहा है पर वो हड्डी से नहीं है, वो उसी का खून वो पी रहा है, उसको लगता है कितना अच्छा है और झगड़ा करता है दूसरे कुत्तों के साथ कि ये हड्डी मेरी है। तो ये वासनाओं में भी ऐसा ही आदमी फंसा है, उसको लगता है ये छोड़ती नहीं है उसको वासना, एक अनुभव उसको सिखाता भी नहीं है, 15 दिन एक ही हड्डी पकड़ के रहता है, फिर छोड़ता है फिर दूसरी हड्डी देता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरा ही खून है, पर वो भूल जाता है वापस 10 दिन में वापस दूसरी हड्डी पकड़ता है। मनुष्य आत्मा भी ऐसी ऐसे गिरफ्त में फंसी है वासनाओं के, जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति यहां से अगर छूटना है तो बहुत पावर चाहिए, या ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती का, इसके विरोध में आप ऊपर जाना है आपको तो बहुत शक्ति चाहिए ब्रह्मचर्य की, उसके सिवा नहीं जा सकता है, जबरदस्त एनर्जी चाहिए ऊपर उड़ने के लिए, रॉकेट में कितना एनर्जी होती है, बहुत जबरदस्त एनर्जी तब हो जाता है ऊपर, तो उतनी एनर्जी चाहिए ये वासनाओं के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निकलने के लिए। कोई कोई आत्मा यहाँ से छूट निकलती है, सब नहीं निकल सकते, कोई पावरफुल ऊपर। और क्या बोला आज, तो जो जो नष्ट मोह है वही क्या होंगे, वही समीप संबंध में आएंगे, और फिर उसके बाद में बाबा ने कहा पुरुषार्थ और प्रारब्ध, नहीं पुरुषार्थ और ये मुश्किल, मुश्किल पुरुषार्थ में भी तुमको मुश्किल मेहनत ना हो, मुश्किल अनुभव ना हो, आदि से अंत तक मुश्किल अनुभव ही ना हो, ये है क्या उसकी निशानी, समीपता की निशानी, समीपता की निशानी बाल ब्रह्मचारी, समीपता की निशानी परोपकार, परोपकार समीपता की निशानी नष्ट मोह, समीपता की निशानी पुरुषार्थ में मुश्किल का अनुभव ही ना हो, पर मनोरंजन का अनुभव हो, खेल का अनुभव, मेहनत ना लगे,
ये है समीपता।
और समीपता की निशानी
सोचा
रोना बंद,
रोना बंद, रुलाना भी बंद,
रुलाना वो भी करते कुछ कुछ, रुलाना भी बंद, खुद तो नहीं रहते कोई कोई, दूसरों को बहुत रुलाते हैं,
मन से भी नहीं
रोना, मन से भी रोना बंद,
तीन चार
बातें नहीं, पांच बातें बताइए बाबा, और सेवाओं में बिजी रहना, बहनों को टीचर्स को मार्गदर्शन करना, एक ही एक में रहना, ये सब निशानी है समीपता की, केवल दो ही नहीं, सब 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 मिलके सब सब पकड़ के सब हो जाए। चलो और क्या बोला, एक हफ्ते में
बोला होगा तो कर लेंगे कि बच्चे सोच रहे
ऐसे, जंगली ख्यालात वाले बच्चे भी है यहाँ पर,
नहीं आ
रही थी, शब्द यूज करता है बाबू, इसको जंगली ख्यालात कहते हैं,
कैसे आज आ गया वो बाबू, जंगली
जंगली जानवर सुना है पर जंगली ख्यालात, परंतु पुरुषार्थ तो प्रारब्ध बड़ा है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है, बड़ा प्रारब्ध ही, परंतु पुरुषार्थ को सामने रखा जाता है, आगे रखा जाता है,
एक्चुअली जब पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसको महत्व देंगे,
हाँ।
जब प्रारब्ध में होंगे तो फिर पुरुषार्थ का तो कोई मतलब नहीं, मतलब नहीं।, नहीं।, नहीं।
बिना पुरुषार्थ के तो कुछ नहीं,
नहीं।
और
मंत्र महान बनने के लिए बना,
महान मंत्र
को
अपनी नेचुरल नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी,
पावन बनाना है
तभी और
चलते फिरते याद में रहने के लिए बाबा ने बोला है ये आज्ञा क्यों है,
और मिठाई भाई क्या बोला, काल
काल
आत्मा क्या मिठाई है ये खा ले, काल
मिठाई
मिठाई थोड़ी
आत्मा को काल पकड़ नहीं सकता, ना ही आत्मा कोई मिठाई है जो काल खा ले, और
मीठी से मीठी चीज बाबा
से एक ही बाबा सबसे मीठी सैक्रीन मोस्ट, और स्वीट होम, स्वीट राजधानी भी स्वीट होम है, और बाप है
और थाना कल है कि किसमें अज्ञान नींद में चला गया, कल्प किया लाखों वर्ष के अभी है और नेत्रहीन हो गए, किसी बात कौन सी आगे थी कदम
पांच हजार साल का बना दिया चक्र, 40,000 5,000 साल का लाखों वर्ष का बना दिया
है,
मैंने निकाला था वो
कितना होती है
ना, और
डायरेक्ट
भगवान द्वारा पालना पढ़ाई और श्रीमत श्रेष्ठ श्रीमत का जो पालन करते ये
हल्का रहने के लिए
जो भी पाप किए वो किसको सुना दो, अविनाशी सर्जन को सुना दो, अविनाशी बाप के सामने रख दो, पर जो जन्म जन्म के पाप है योग से भस्म करो। इस जन्म की कहानी सुनाने से ऐसा मत समझना कि तुम्हारे पाप भस्म हो गए हैं, एक साकार मुरली है, अपनी जीवन की कहानी लिख देने से ये मत समझना कि तुम्हारे पाप भस्म हो, जन्म पर पाप का जन्म जन्म के पाप तुम्हारे सर पर है, अब तुम्हारे पाप का घड़ा फूटने वाला है,
फूटने वाला है।
बस केवल इतना मत समझ, तुम्हें बाबा को इस जन्म के सारे पाप सुना दिए, रजिस्टर साफ हो गया, तो जन्म जन्म जो किया उसका
उस पाप की दुख भोगने को कर्म भोगना है।
और क्या बोला राजू भाई एक हफ्ते में कुछ?
मैं ये बोला कि जो कुछ पाप हुआ है उसका कुछ सजा तो
भोगना ही है। बाप को मजा आता है एक चीज में, कौन सी चीज है?
बच्चों को पावन बनने में।
और बच्चों को मजा आता है पावन बनने में कि वो मुश्किल है? बाबा को तो बहुत मजा आ रहा है पावन बनने में, तो तुमको भी मजा आना चाहिए पावन बनने में।
बनने में बाबा को इसलिए मजा आता है क्योंकि वो 100% सफल हो जाता है।
क्योंकि उसके पास दो मेथड से बनाने की, एक तो योग और दूसरा वो सजाए दंड ट्रिब्यूनल
और एवर प्योर एनी टाइम।
और
बाबा को सजा देके
बाबा सजा थोड़ी देता है कुछ
नहीं आता होगा।
उसको मजा आने की बात ही नहीं है, बाप खुशी ना खुशी से परे है,
अप्रिशिएट करने के लिए
वो तो उसको कोई लेना नहीं, अकरता है वो, अभोगता है, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है वो।
मजा इसलिए
उदासी न बदासी न,
बच्चे बन रहे इसलिए थोड़ा मजा आता है,
दिखाता है वो, पर बाकी वो तो अनासक्त है, उदासी न बदासी न, उसको कुछ किसी से कुछ लेना देना नहीं है वो। बाबा सजा, वो बाबा कोई सजा नहीं देता, वो ऑटोमेटिक कर्म, ऐसा फिलोसफी ऐसी है कि ऑटोमेटिक आत्माओं को मिलते रहता है, ऑटोमेटिक एक का 100 गुना ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान से पहले एक का 1 गुना, ऑटोमेटिक मशीन में फिट कर दिया है सारा सॉफ्टवेयर, सब अपने आप होते रहता है। और क्या बोला? मैं तुमको मॉडल बनाने नहीं आया, मैं तो तुमको राजाओं का राजा बनाने आया हूँ,
रियल में बना
वो चैतन्य, नेचुरल चैतन्य लक्ष्मी नारायण तुम बनते हैं, वो जो होते हैं मूर्ति वो हूबहू बनाते हैं, परंतु जो साक्षात कर कहा क्या है, वो ना खुद बना सकते चित्र ना दूसरों को बना सकते है, तुम अभी बन रहे हो चैतन्य में, बन रहे हो चैतन्य लक्ष्मी नारायण तुम अभी बन रहे हो। और साइलेंस के सारे स्लोगन 2-3 मिनट है, और साइलेंस की शक्ति से क्या कर दो, स्वीट होम का रास्ता सहज हो जाएगा। और अभिमान और अपमान, मुझे भी आगे होना चाहिए, मुझे भी पद मिलना चाहिए, मेरा भी नाम मान शान होना चाहिए, समाधान स्वरूप बनना है। हम अभी भाई निकालो कुछ,
ब्रह्मा है
सदगुरु की, ब्रह्मा की भ्रुकुटी है सदगुरु का दरबार, और ये भी बोला ये है सदगुरु का दरबार, तुम अभी संगम पर खड़े हो, वो है वहाँ पर ढेर गुरु है, यहाँ पर है सदगुरु, महिमा गुरुओं की नहीं होती है, महिमा होती है सदगुरु की। तो बाप आए हैं, बाप सदगुरु है,
और परमात्मा प्यार में कभी कभी को बढ़िया करने वाले
ज्ञानी, अंदर का बोलो ये वाक्य याद करके जीवन में तो कुछ आएगा नहीं, वो तो याद रहेगा, अंदर का माल बोलो।
ये तो ऊपर खाली
रावण का सिर नहीं जलाना है कि काटना नहीं है, अब है
ये सिर नहीं चाहिए बाबा,
हाँ
रावण वाला सिर,
रावण का सिर,
हाँ
कबीर का एक दोहा भी है ना ऐसा, मुझे दोहा याद नहीं, उसका अर्थ याद है कि प्रेम जो है वो खेतों में नहीं निबजता, उगता नहीं है खेतों में, नहीं उपजता, ना ही वो बाजार घाट में, वो बाजार घाट में बिकता है, वो तो सर दो और प्रेम लेके जाओ। कबीर कहे ये सर दे दो और प्रेम लेके जाओ, परमात्मा प्रेम चाहिए ना तो सर दे दो। अहंकार ये है, ये बहुत अच्छा है। कबीर कहे नहीं प्रेम निबचत नाही ऐसे कुछ है, ये बहुत अच्छा है, सर दे दो और ले जाओ, बहुत सिंपल है, तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है।
उन्होंने
भी तो बाबा याद करते हैं इन सब आत्माओं के दोहे, झूठी माया झूठी काया झूठो सब संसार, को करे जंजाल कौन करे जंजाल जग में जीवन थोरो, अरे झूठी माया झूठी काया झूठो सब संसार। मीरा का दोहा है ये, भगवान याद करता है संगम पर, कबीर को भगवान याद करता है, गुरु नानक को भगवान याद करता है, गीताओं को, गीता को भी याद करता है, क्रिश्चियनिटी का भी कुछ कुछ लेता है, शंकराचार्य को तो महान आत्मा है। सच पहनना सच खाना कर जैसा, और भी कुछ पावरफुल था, एक सब एक साथ जाते हो तो भी ज्ञान की चर्चा करो, एक था ना तीन चार दिन
भी जाते
हाँ, तो उसके भी वायुमंडल बनेगा ज्ञान की, ज्ञान मुख से निरंतर निकलता रहना चाहिए, ये सबसे बेस्ट चीज है।
अनिल भाई कुछ निकालो,
ज्ञान जो है मुख से निरंतर निकलता रहना चाहिए, अविरत धारा, अविरल धारा निरंतर बहती
है।
अपने मन को सुनाओ, तुलसीदास ने जो रामायण लिखा रामचरितमानस किसको लिखा, संसार के लिए थोड़ी ना लिखा, उसने अपने ही मन को पूरा सुनाया और लास्ट में लिखा अब पावा परम विश्रामा, अब ये लिखने के बाद भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। शंकराचार्य किसको कह रहा है, भज गोविंदम हे मूर्ख मन, अपने मन को कह रहा है तू कहाँ जा रहा है, ये संसार में अपने मन को मत लगाओ। भज गोविंदम मूढ़मति मूढ़मति गोविंदम भज मूढ़मति।
अपने दिनकर भाई ने लिखा है कमरे में, ये दिनकर मूर्ख तेरा मन कहाँ जा रहा है।
पढ़ता है बहुत अच्छा है,
लिखा है ना
खूटे
से यस्य ब्रह्माणि रमते नित्यम नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। तो निरंतर अपने मन को वो ब्रह्म में लगा रहा है, तुमको निरंतर एक बाप में लगाना है।
ये बाहर वाले ने किसमें लिखा है बहुत अच्छा है, गुण न हो तो रूप व्यर्थ है,
गुण ना हो तो रूप व्यर्थ,
विनम्रता न हो
चाणक्य है,
विनम्रता न हो तो
चाणक्य
विद्या करते हैं
चाणक्य,
उपयोग न आए तो उपयोग न आए तो
चीज धन व्यर्थ,
साहस न हो तो
जीवन
हथियार व्यर्थ
हथियार,
और भूख न हो तो
भोजन
भोजन, होश न हो तो
जोश व्यर्थ,
और परोपकार न करने वाले को तो जीवन ही व्यर्थ।
इसके लिए परोपकार करो। ओम शांति।